तब तब कर निखरेगा जीवन, तप कर बनते देव महान, तप से मिलता जीवन का सुख, तप से मिलता जीवन दान। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता।
ओम शांति। आज हमारे बाबा के घर में बाबा का एक फरिश्ता हम सबको भी उड़ाने के लिए आया है। दीदी, क्या नाम है? उर्मिला दीदी, ठीक है। नाम भी कितना अच्छा है हमारी दीदी का, उर्मिला। तो हमारी भट्टी की स्टार्टिंग आज उर्मिला दीदी के द्वारा बाबा करेंगे। तो हम सभी दीदी जी का बहुत ही एक ही हाथ की ताली से वेलकम करेंगे। दीदी जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है इस बाबा के बच्चों की भट्टी में। और सभी को आज टाइम कितने बजे दिया था? 12:15 आपके व्हाट्सएप पे 12:15 आया होगा। तो 12 बजे भी आप, 12 बजे अगर ट्रेन हो तो 12 बजे ही स्टेशन पे पहुंचेंगे। हाँ, तो सभी पुराने बच्चे हैं, कहने की जरूरत नहीं। आगे से सभी 10 मिनट पहले पहुंचेंगे, ठीक है। तो अभी दीदी जी का वेलकम करते हुए अभी माइक दीदी जी को देते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। आप सभी बाबा के फरिश्ते बच्चों का मधुबन में स्वागत है। क्या ये आपकी पहली क्लास है? आज ही पहुंचे हैं। और केवल चंडीगढ़ ही है? केवल 21 है? तो पहली क्लास हम, जो हमारा पहला पाठ है, उसी पे करेंगे। ब्राह्मण जीवन का आधार स्तंभ आत्म अभिमानी स्थिति। ये टॉपिक बहुत ही सुंदर है, क्योंकि इस पे मुरली में रोज ही कुछ ना कुछ आता ही है। 2 दिन पहले बाबा ने मुरली में बोला कि शरीर तो बदलते रहते हैं, लेकिन एक ही आत्मा है जो अलग अलग शरीरों में प्रवेश करती है। तो मैं इस पे विचार कर रही थी कि एक कंप्यूटर में अपन अगर एक CD डाली तो स्क्रीन पे कुछ और आएगा, और उसी कंप्यूटर में दूसरी CD डाली तो स्क्रीन पे कुछ और आएगा। तो गुलजार दादी की अपनी आत्मा उनके शरीर में होती है तो स्क्रीन पे कुछ और आता है, और जब बाबा की आत्मा उनके तन में आती है तो स्क्रीन पे कुछ और आ जाता है। वो तो CD जैसी होगी वैसी स्क्रीन हो जाएगी। और हमारी CD भी जब सतयुग में परफेक्ट होती है तो स्क्रीन पे कुछ और ही दृश्य आता है, और कलयुग में जब ये अंतिम जन्म की CD होती है तब कुछ और आता है चेहरे पे है। लेकिन असली चेहरा तो आत्मा ही है। ये जो चेहरा है इसको तो हम क्या कहते हैं, मुखौटा है ये। जैसे जब कोई खेल करता है, कोई नाटक ड्रामा सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, तो बच्चे मुखौटा नहीं लगा लेते, कोई भालू का लगा लेता है, कोई मोर का। और पहले तो शादियों में एक वो घोड़ी में आदमी घुस जाता था, कहते थे घोड़ी नाच रही है, घोड़ी नाच रही है, तो वो भी एक मुखौटा ही होता था। तो ऐसे ही ये भी मुखौटा ही है। मुखौटा माना मुंह खोटा, यानी कि खोटा मुंह, तो ये भी खोटा मुंह है। किसी ने नारी का मुखौटा लगा लिया तो वो नारी लगने लगी, किसी ने नर का मुखौटा लगा लिया तो वो नर लगने लगा। लेकिन इस खोटे मुंह के भीतर जो असली मुंह है वो सबका एक जैसा है। तो हम सब आत्माएं एक जैसी हैं, एक घर से आई हैं, एक जैसा रंग रूप है। ये बाबा ने हमको पक्का पाठ पढ़ाया है। अगर लौकिक दुनिया में हम रोज के जीवन में देखें तो ये हमारी स्मृति पवित्रता का आधार है। हम कहते हैं कि पवित्रता इज द मदर ऑफ पीस एंड प्रोस्पेरिटी। तो पीस का आधार है प्योरिटी, और प्योरिटी का आधार है हमारी ये स्मृति कि हम आत्मा एक जैसी हैं और शरीर मुखौटा है। इस पे मैं अभी थोड़ी सी चर्चा करूंगी। जैसे आपने देखा होगा आज कलयुग के अंत में भी जो छोटे बच्चे होते हैं ना, 8 साल से कम, 7 साल से कम आयु के, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको अगर आप फ्रॉक पहना दो तो लड़का भी लड़की लगने लगता है, और शर्ट पहना दो तो लड़की भी लड़का लगने लगती है। क्योंकि उस छोटी आयु में दोनों के हार्मोन्स एक जैसे होते, हार्मोन्स एक जैसे होने के कारण अंतर नहीं है शरीर में कोई भी। और सतयुग में भी श्री लक्ष्मी और श्री नारायण, उनका चेहरा डिट्टो मिलता जुलता है। विदेशियों को तो ये भी नहीं पता पड़ता इनमें मेल कौन है और फीमेल कौन है, उन्हें बताना पड़ता है कि ये ऐसे कपड़े वाली फीमेल है और ऐसे कपड़े वाला मेल है। लेकिन आप चेहरे को ध्यान से देखेंगे तो कोई अंतर नहीं है, बाल भी दोनों के लंबे, गहने भी दोनों के, फर्क सिर्फ ये है कि नारायण का मुकुट थोड़ा लंबा बना रखा है, लक्ष्मी का मुकुट थोड़ा सा छोटा है, बाकी लंबाई में भी कोई अंतर नहीं है कि भाई नारायण बहुत लंबे हों या लक्ष्मी बहुत छोटी हों। तो सतयुग में चूंकि हार्मोन्स में केवल 10% का अंतर था, लक्ष्मी नारायण के हार्मोन्स में केवल 10% का अंतर था। तो जब अंतर नहीं होता तो आकर्षण नहीं होता। जैसे यहां एक नारी का दूसरी नारी में आकर्षण नहीं है क्योंकि हार्मोन्स एक जैसे हैं, तो वहां भी हार्मोन्स एक जैसे थे तो कोई आकर्षण नहीं था। कितने भी सुंदर थे लेकिन किसी की दृष्टि किसी में जाती नहीं थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, सतयुग बीता, फिर त्रेता बीता, और जब द्वापर युग आया तो धर्म अलग कर्म अलग, और उसके कारण नर के कर्तव्य अलग और नारी के कर्तव्य अलग। अब नर युद्धों में जाने लगे, भारी भारी काम करने लगे, अगर वो कबीले का सरदार है तो पूरे कबीले की रक्षा उसको करनी है, शस्त्र उठाना है, पहरा देना है, और अगर वो जंगल से लकड़ी लाता है कि वृक्षों पर से चीज लाता है तो वृक्ष पे चढ़ना, ये भी भारी काम है, चीज को इकट्ठा करना संभालना, तो भारी भारी काम सब नर के जिम्मे आ गए। और घर संभालना, घर के अंदर रहना, ये हल्के फुल्के काम महिलाओं के जिम्मे आ गए। तो दोनों के हार्मोन्स में चेंज हो गया, आवाज में भी चेंज हो गया, नर की आवाज भारी, नारी की आवाज पतली, नर लंबे, नारी की लंबाई कम, नर के शरीर थोड़े मोटे तगड़े, नारियां थोड़ी दुबली, ये परिवर्तन द्वापर के बाद आया। अब जब परिवर्तन आ जाता है तो आकर्षण होता है, क्योंकि वो व्यक्ति मेरे जैसा नहीं है, अपने से भिन्न में आकर्षण होता है। और फिर युग परिवर्तन के साथ साथ ये भिन्नता और ज्यादा बढ़ गई। नर पढ़ते हैं, नारियां पढ़ती नहीं है, नर को फ्रीडम है कहीं भी आने जाने की, नारी घर के अंदर बंद है। नर धीरे धीरे नर के गहने भी उतर गए और नारी गहना पहनती है, घूंघट निकालने लगी। तो इस प्रकार से बिल्कुल भिन्न क्षेत्र हो गए, जिधर नारी नर बैठेंगे उधर नारियां नहीं जाएंगी। तो इसके कारण क्या हुआ कि हार्मोन्स का डिफरेंस होते होते 90-10 हो गया। पहले 10% भिन्नता थी, 90% समानता थी। कलयुग का अंत आते आते 10% समानता और 90% भिन्नता। तो परिणाम ये हुआ कि भिन्नता के कारण आकर्षण बढ़ा और उसके कारण काम विकार अति में गया। अब जब बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान दिया तो बाबा ने फिर उलट फेर कर दिया। कैसे उलट फेर कर दिया? नर वाले सारे काम नारियों को दे दिए और नारियों वाले सारे काम नरों को देती। यज्ञ में यही तो हुआ, आकर्षण खत्म। जो दुनिया में भाई काम करते हैं वो सारे काम बहने करती है। दुनिया में पैसा भाई संभालते हैं, यज्ञ में पैसा बहने संभालती है। भाई समर्पित हो जाएगा तो बहन पैसे निकाल के देती है, सब्जी ले आ, बिजली का बिल दिया, कितने पैसे दे दूं? 2000। बचे वो कहां है? लाओ हिसाब वापस दो। और वहां मंच पे गद्दी पे भाई बैठते हैं, यहाँ गद्दी पे बहने बैठती हैं। वहां किचन में काम बहने करती हैं, यहाँ किचन में काम भाई करते हैं। खाना वाना बना के, बहन जी खाना बन गया आ जाओ खा लो, थाली लेके आता है, डाल के देता है, खिलाता है, फिर बर्तन मांजता है। तो वहां हिसाब किताब भाई रखते हैं, यहाँ सारा हिसाब किताब बहन रखती है, क्या घटा क्या जमा, पेमेंट बहन करती है मकान वाले को, बजरी सीमेंट कितना आया देखने जाती है, कितना मकान बन गया, कैसे बनेगा, नक्शा पास करती है। वहां तो बहन को पता ही नहीं होता नक्शा क्या होता है, लाके बिठा देते, बैठ गई। तो सब कुछ बाबा ने चेंज कर दिया, इसलिए हार्मोन्स फिर चेंज हो गए। अब बहने फिर से भाइयों जैसी हो गई और भाई फिर से, मतलब उधर नम्रता आ गई, इधर आत्मबल आ गया, दोनों का ही फायदा हो गया। इनका दब्बूपना डरपोकपना खत्म हो गया, इनमें आत्मबल आ गया, उधर ईगो खत्म हो गया, नम्रता आ गई, मैं खत्म हो गया। तो इसलिए बाबा ने फिर से बैलेंस बना दिया और ये बैलेंस अगले 2500 साल तक चलता रहेगा। तो ये पाठ अति अनिवार्य है। कोई नर नहीं है, कोई नारी नहीं है, सब आत्माएं हैं, सब भाई भाई हैं। ये कूट कूट के हमको भरना है। आपने बेताल पच्चीसी की कहानी सुनी होगी, उसमें कहानी आती है कि एक महिला की शादी होती है और उसको लेने के लिए उसका पति और पति का दोस्त जाते हैं। तो उस जमाने में घूंघट निकालते हैं, नर नारी एक दो को देखते नहीं, तो वो महिला को घूंघट निकाल के उन दोनों के साथ साथ भेज देते हैं। अब रास्ते में क्या होता है कि कुछ लोग हमला करते हैं और उन दोनों पुरुषों को मार देते हैं और वो महिला बैठ के विलाप करने लगती है, उसे पता ही नहीं अब मैं कहां जाऊं। तो वो देवी की भक्त होती है और इतनी देर में देवी प्रकट होती है और कहती है तुम रो क्यों रही हो? तो कहती है देखो ये मर गए दोनों, अब मैं कहां जाऊं, मुझे रास्ता भी नहीं पता। तो वो देवी कहती है मैं इनको जिंदा कर दूंगी, लेकिन तुम ऐसा करो कि जिसका सिर है उसके साथ उसका धड़ लगा दो और मैं उनमें जीवन डाल दूंगी। लेकिन चूंकि महिला तो घूंघट में थी, उसने देखा ही नहीं था किसका सिर किसका धड़, तो उसने उल्टा लगा दिया। जिस व्यक्ति का धड़ था उसको सिर दूसरा लगा दिया, दोनों उल्टे हो गए और उसने जीवन डाल दिया। अब जीवन डाल दिया तो सवाल ये है कि ये स्त्री किसको पति माने। ऐसे वो बेताल पूछता है विक्रम से कि ये स्त्री किसको पति माने, आप बताओ। क्योंकि जीवन तो आत्मा से बनता है, तो जिधर आत्मा है उसी को माने। तो फिर इसमें भी प्रधानता किसकी हुई, आत्मा की, है ना। जिधर आत्मा है उधर ही व्यक्ति है। धड़ तो आजकल तो जयपुरी टांगे लग जाती हैं, जयपुरी हाथ लग जाते हैं, कितनी बार धड़ बदलते हैं, कितनी बार क्या बदलता है। और अभी देखो गवर्नमेंट ने नया कानून यातायात का बनाया, सबको बेल्ट लगानी है, सबको हेलमेट पहनना है, पीछे बैठने वाले को भी पहनना है। मैंने एक बार एक पुलिस वाले से पूछा था, अभी भी मैं कहां गई थी वहां पुलिस वालों के बीच में प्रोग्राम था, तो मैंने पूछा था कि आप लोग सिर पे हेलमेट पहनाते हो, घुटनों में कुछ क्यों नहीं पहनाते, कंधों पे कुछ क्यों नहीं पहनाते। और वो जो बेल्ट है वो भी वास्तव में सिर की रक्षा के लिए है, क्योंकि आगे जाके सिर लगता है। तो उन्होंने तो कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन वास्तव में इसके पीछे भी ज्ञान है, क्योंकि शरीर का जो राजा है आत्मा वो यहां बैठा है। और राजा का सिंहासन अगर सुरक्षित है तो समझो सब कुछ सुरक्षित है। और राजा का सिंहासन ही टूट गया, वही डोल गया, तो राजा तो सिंहासन से उठ के भागेगा। अभी देखो मैं यहां बैठी हूं, मान लीजिए एक पत्थर उस खिड़की के पास आके गिरता है तो मैं निश्चिंत बैठी रहूंगी, कोई बात नहीं है, पत्थर अभी बहुत दूर है। अच्छा एक पत्थर बीच में आके गिरता है तो मैं हल्की सी चौकन्नी हो जाऊंगी, भाई पत्थर आ रहा है कहीं मुझे ना लग जाए। लेकिन एक पत्थर आकर के यहां लगे तो मैं तो उठ के भागूंगी। तो पांव की तरफ कुछ होता है तो आत्मा इतनी ज्यादा चिंता नहीं करती, वो सोचती है कोई बात नहीं है पांव ठीक हो जाएगा। थोड़ा इधर बीच में छाती में कहीं लगता है तो थोड़ा लगता है, लेकिन अगर कोई यहां चोट लगे तो फिर वो कहती है अब तो मेरी सीट ही टूट गई, अब मैं बैठ के क्या करूंगी, फिर वो भागती है। तो गवर्नमेंट ने कानून इसलिए बनाया कि आत्मा बैठी रहे, बेशक लंगड़ी हो जाए लुल्ली हो जाए, पर वो जाए नहीं, वो बैठी रहे। इसलिए भाई सिर की सुरक्षा करो, जिंदा तो रहे कम से कम। तो ये कानून भी आत्मा की रक्षा के लिए बना है। और आप देखिए बाबा मुरली में कहता है कि मैं जगत का बीज हूं, और हमको भी कहता है आप भी बीज हैं आत्मा, और एक बीज ये जड़ है। तो कई बार बाबा कहता है अगर ये जड़ बीज बोलता होता तो अपनी कहानी सुनाता, लेकिन ये तो बोल नहीं सकता, पर मैं चेतन हूं मैं अपनी कहानी सुनाता हूं। तो जो जड़ बीज है उसको अपन उगाते हैं तो वो नष्ट हो जाता है, और आत्मा 84 जन्मों में उगती है, नष्ट नहीं होती, इसकी शक्ति हर जन्म में अक्षीण हो जाती है। और शिव बाबा ऐसा बीज है जो एक बार उगता है लेकिन उसकी शक्ति पे कोई असर नहीं पड़ता, इतना बोलता भी है, शरीर में बैठता भी है, खाता भी है, चलता भी है। गीता में कहा है तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लोक संग्रह अर्थ कर्म करता हूं। तो साकार के तन द्वारा बाबा ने कर्म करके दिखाई, अव्यक्त के द्वारा कर्म बहुत नहीं किए लेकिन दृष्टि वाणी टोली ये तो किया है। फिर भी बाबा को कोई लेपछेप नहीं लगता, क्योंकि उसकी कर्म करने की विधि इतनी यूनिक है, कर्म करके तुरंत न्यारा हो जाता है। और हम सतयुग के पहले जन्म में पहला कर्म करते ही लेपछेप लगा लेते हैं, जैसे ऐसे बच्चे हैं कि ड्रेस पहन के गए और पहनते ही कुछ ना कुछ छींटा लगा ही लिया, और उसके बाद छींटे लगते ही जाएंगे, है ना। तो आत्मा का एक नाम है सोम, जैसे चंद्रमा को हम सोम कहते हैं, सोम उसकी कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, अमावस्या से पूर्णमासी तक बढ़ेंगी, पूर्णमासी से अमावस्या तक कम होंगी, ये चलता रहता है। इसी तरह से आत्मा भी सोम है, सतयुग से कलयुग तक कलाएं उतरेंगी और फिर एकदम कलाएं चढ़ेंगी। इसी के नाम पे सोमनाथ के मंदिर का नाम सोमनाथ रखा है, भगवान का एक नाम सोमनाथ है। सोम रस पिलाने वाला, आत्मा जो सोम है उसको ज्ञान का रस पिलाने वाला। तो जो जड़ बीज है, प्रकृति का बीज है सतयुग और त्रेता में, उस बीज को उगने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बाबा कहता है प्रकृति सुखदाई है, प्रकृति में उगने में कोई मेहनत नहीं होती, ना खाद डालनी पड़ती, ना पानी देना पड़ता, ना हल चलाना पड़ता। जो भूमि है वो अकृष्ट पत्या है, बस ऑटोमेटिक हवा से बीज उड़ते हैं और खेती उग जाती है और किसान को बिना मेहनत कई गुना फल मिलता है। आत्मा को भी कोई मेहनत नहीं है, जन्म भी सरल, पालना भी सरल, मृत्यु भी सरल। तो सतयुग और त्रेता में आत्मा रूपी बीज भी सुखी है, प्रकृति का बीज भी बहुत आनंद में है। लेकिन जैसे ही द्वापर युग आता है, जन्म मृत्यु जीवन संघर्षमय हो जाते हैं और जो प्रकृति का बीज है उसका उसके लिए भी बहुत संघर्ष है। उसकी कहानी और हमारी कहानी मिलती जुलती है, अभी हम उसका थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे। क्योंकि बीज इसलिए उगता है कि उसके अंदर की शक्तियां बाहर प्रकट हों और दुनिया को कुछ दे पाए। और हम आत्माएं भी जन्म पुनर्जन्म इसलिए लेती हैं कि हर जन्म में हम अपने कर्मों का यादगार बनाती हैं। द्वापर में भी हमने बहुत अच्छे यादगार बनाए, द्वापर के जो बड़े बड़े राजा थे वो हम ही तो थे। तो वो जो बीज है, एक बीज के मन में एक विचार आया कि मैं अपनी अंदर की शक्तियों को बाहर प्रकट करूं, इसके लिए उसे अपने आप को नष्ट करना पड़े। गहरी अंधेरी घुटन भरी जमीन में जाना पड़े और जमीन कहती है कि अगर तू अंदर आएगा तो मेरे भार के नीचे दबके नष्ट हो जाएगा, तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। एक बहुत बड़ी चुनौती है बीज के सामने, हमारे सामने भी चुनौती है। अगर हम चाहते हम दुनिया को अपने गुणों से गुणवान बनाएं, हम अपनी अच्छाइयों से दुनिया में अच्छाई फैलाएं, तो हमें भी क्या कहा जाता है, बहुत मुश्किल है ये काम, संभव नहीं है। तो बीज क्या करता है, हिम्मत करके अंधेरी जमीन के अंदर जाता है और वो भी औंधे मुंह उल्टे मुंह जाता है। और जब अंदर जाता है तो उसको जरा सा जल मिलता है, उसके होठों को वो जल छूता है और होठ खुल जाते हैं। और जैसे ही खुलते हैं शक्ति बाहर निकलने के लिए लालायित हो जाती है। और जैसे ही होठ खुलते हैं शक्ति थोड़ी सी बाहर आती है, अंदर ही अंदर बीज सीधा हो जाता है। तो धरती भी देखती है, कमाल है। और फिर वो सोचती है जिसने इतनी हिम्मत की मैं उसे रास्ता दूं, तो उसके कण भी दो हिस्सों में फट जाते हैं और जमीन फाड़ के वो बीज बाहर निकल आता है। ये हमारा भी गुण है, हमको भी इतनी सी भी एक सीढ़ी मिलती है उस पे पांव रख के हम अपनी शक्ति दुनिया को देना चालू कर देते हैं और उसके बाद लोग देखते हैं कि भाई इसमें तो कुछ है, तो वो धीरे धीरे हमारे लिए थोड़ा सा माहौल बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे बीज लास्ट तक चुनौती के बीच में है, हम भी लास्ट तक चुनौतियों के बीच में। अब बीज जैसे ही बाहर निकला उसने रोशनी देखी, वो थोड़ा खुश तो हो गया, लेकिन बाहर निकलते ही एक बहुत बड़ी चुनौती हवा की आई। हवा कहती है मैंने बड़े बड़े पेड़ उखाड़ दिए, बड़ी बड़ी चट्टान हिला दी, तेरा तो अस्तित्व ही क्या है। और मैं एक झोंके से तेरे को उखाड़ फेंकूंगी, लेकिन वो बीज अपने पांव रोपे रहता है जमीन में और हवा इधर आती है तो इधर झुक जाता है, इधर आती है तो इधर झुक जाता है और कहता है ठीक है मुझे झुला ले जितना झुलाना चाहती है। तो जो चुनौती थी उसको उसने सुअवसर बना दिया, झूला बना दिया। आई थी उसको उखाड़ने, लेकिन वो लचीला है तो उसने उसको झूला बना लिया। अब हमें भी बहुत चीजें उखाड़ने आती, लेकिन अगर हम उसको सुअवसर बना लेंगे उस चुनौती को, हम भी उसको झूला बना लेंगे। जैसे एक मुरली में बाबा ने कहा था झुकना ही झूलना है। कोई आता है अकड़ के तो अकड़ वाले के सामने झुक जाओ, झुक जाओगे तो झूलोगे आनंद में। तो हम भी झुक जाते हैं, नम्र हो जाते हैं, चुनौतियां आती हैं और हमें कुछ ना कुछ दे के चली जाती है, हमारा लेती कुछ भी नहीं। उसके बाद बीज का जो कोमल तना था उसको देख के कईयों को लालच आया, कई चोंच मारने आए और कईयों ने चोंच मारी भी और बेचारे को पीड़ा भी हुई, फिर भी उसको सहन कर गया क्योंकि उसको विकसित होना है। और चोंच मारने वालों को वो क्या कहता है कि मुझे थोड़ा सा बड़ा हो लेने दो, फिर मेरा जो भी कुछ हो सारा तुम्हारा ही है, तुम ही खाना। तो हम भी क्या कहते हैं चोंच मारने वालों को कि हमें थोड़ा सा मजबूत होने दो, उसके बाद हमने तो जीवन तुम्हारे लिए ही बनाया है, हमारा जो कुछ हो वो तुम्हारे लिए ही है, हम सुख देंगे तो तुमको ही देंगे, शांति देंगे तो तुमको ही देंगे। और अगर हम कुछ स्थूल भी होगा तो वो भी हम तुम्हारे लिए ही देंगे, हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं, पर हमें थोड़ा सा मजबूत तो होने दो। तो जो चुनौती बन के आते हैं वास्तव में हम जो कुछ कर रहे हैं उनके लिए ही कर रहे हैं, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं। अब बीज थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो जो खरपतवार है, झाड़ झंखाड़ है, उसमें से कईयों ने फैल के उसके हिस्से का पानी चुराया, कईयों ने फैल के उसके हिस्से की खाद चुराई और कईयों ने तो उसके तने को फैलने से रोका और कईयों ने अपनी लंबाई उससे ऊंची बना के उसको ढकने की कोशिश की ताकि ये किसी को दिखे ही ना, लेकिन फिर भी वो हिम्मत से बढ़ता गया और उसकी हिम्मत को देख के माली बड़ा खुश हुआ। इतनी चुनौतियों के बीच में ये हरा भरा खड़ा है तो माली ने क्या किया, एक दिन आके सारे झाड़ झंखाड़ उखाड़ फेंके। तो इस जगत का माली कौन है, शिव बाबा। और जब वो देखता है कि एक आत्मा इतने विरोधों के बीच में भी बढ़ती जा रही है, इतनी चुनौतियों के बीच में भी हिम्मत नहीं आ रही है, तो वो भी फिर हिम्मत देख के खुश होता है। परमात्मा उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, और वो भी झाड़ झंखाड़ को उखाड़ के फेंक देता है, रास्ते साफ कर देता है। और फिर वो पौधा जब उसके ऊपर छोटी छोटी कलियां फूटती हैं, कई कलियां फूटती हैं और फिर वो फूल बनती हैं, तो भंवरे आते हैं, तितलियां आती हैं और वो किसी को नहीं रोकता। जिसको मकरंद लेना है मकरंद ले जाओ, खुशबू लेनी है खुशबू ले जाओ, फूल तोड़ना है तो तोड़ के भी ले जाओ, जो भी जिसको तोड़ना है, क्योंकि मेरा मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं। फिर सूर्य भी कहता है तू इतना लंबा हो रहा है मुझे छुएगा क्या, मेरे में बहुत गर्मी है जला दूंगा। वो कहता है मेरे में शीतलता बहुत है, मैं तेरी सारी गर्मी को सहन कर लूंगा। पौधे के भीतर इतनी शीतलता है कि वो बाहर की गर्मी से भय नहीं खाता। बाहर कितनी भी गर्मी हो अगर मेरे भीतर शीतलता है तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो एक दिन वो फूल खिल जाता है, सबको खुशबू देता है। ऐसे हमारे अंदर भी एक दिन दिव्य गुणों के फूल खिल जाते हैं, हमारी दिव्यता चारों ओर फैलती है, हम भी अपनी दिव्यता से सबको खुशबू देते हैं, लोग हमें दुआएं देते हैं। तो हमारा भी यही लक्ष्य है कि हमारे भीतर के सारे गुण जो अंदर छिपे पड़े हैं वो बाहर आ जाएं। बाहर प्रकट होने में चुनौतियां आएंगी, लेकिन चुनौतियों से कभी भी घबराना नहीं है। तो उस बीज की कहानी और आत्मा बीज की कहानी बहुत मिलती जुलती है। और फिर शिव बाबा कहता है बच्चे इस संगम युग में आप आत्मा बीज को मेरे से इतनी शक्ति ले लेनी है कि आगे के कल्प में 84 बार आपको फिर उगना है। सबसे पहले मालिक किस बीज को बोता है खेत में, जो सबसे अच्छा हो, वो बोने के बाद फिर सेकंड कैटेगरी को लेता है, अब ये खेत इसका बनाओ, उसके बाद तीसरी कैटेगरी वाला लेता है। तो सबसे पहले वो किसको बोएगा, अष्ट रत्नों को बोएगा, उसके बाद 100 को और बोएगा, फिर वो 9 लाख को बोएगा, और उसके बाद तो फिर 33 करोड़ बोए जाएंगे। तो अब मैं कौन से नंबर का बीज हूं, सतयुग में बोया जाऊंगा या त्रेता में बोया जाऊंगा, सतयुग के पहले जन्म में बोया जाऊंगा या दूसरे में या तीसरे में, ये डिपेंड करता है कि मैं संगम युग पर उस सुप्रीम बीज से कितनी शक्ति लेकर के शक्तिशाली बीज बनता हूं। और ये शक्ति कब मिलती है, जब मैं बीज बन करके उस बीज के साथ कनेक्ट हो जाता हूं, मैं भी बीज वो भी बीज, जिसको बाबा कहते हैं बीज रूप अवस्था। बीज रूप अवस्था माना सिमटी हुई अवस्था, सब कुछ सिमट गया, कुछ भी याद नहीं है, ये शरीर लिया, बड़ा हुआ, कितनी बातें याद करनी पड़ी, जन्म देने वाले माँ बाप, चाचा मामा, काका, गांव, शहर, पढ़ाई, खाना पीना, पढ़ना, मित्र दोस्त, ये फैल गया। अब बीज बनना माना उस सारे फैलाव को वापस अंदर, मैं कौन हूं, मैं एक बीज हूं, कोई काका नहीं, कोई चाचा नहीं, कोई मामा नहीं, कोई माँ नहीं, बाप नहीं, भाई नहीं, बंधु नहीं, कोई भी नहीं, मैं कौन हूं, एक बीज हूं, वापस सिमट गया। अगर हमको योगी बनना है तो ये समेटने की शक्ति बहुत अनिवार्य है, फैला हुआ व्यक्ति योगी नहीं बन सकता। तो मैं पुनः बीज बन गई, और मुझ बीज का असली स्थान कौन सा है, परमधाम में बीज बन के सुप्रीम बीज के पास चली गई, तो उस बीज की ताकत ऑटोमेटिक मुझ में उतरती जाएगी। तो जितनी आत्माभिमानी स्थिति, जितनी बीज रूप स्थिति, उतनी ही शिव बाबा से हम शक्ति ग्रहण कर पाएंगे, कैच कर पाएंगे। इसलिए बार बार याद करना है मैं बीज। एक बात और इससे कनेक्टेड है, अभी नवरात्रे आ रही हैं, तो नवरात्रों में मुख्य रूप से दुर्गा की पूजा होती है, और भी देवियां हैं, एक मम्मा के ही ये सारे रूप। तो मैं एक सवाल पूछा करती हूं कि दुर्गा की मां का नाम बताओ। दुर्गा बहुत ताकतवर है, शक्ति की देवी है, कोई युद्ध करने जाता है तो दुर्गा मैया से वरदान लेके जाता है। दुर्गा माना यज्ञ रूपी दुर्ग की रक्षा करने वाली, दुर्गम कामों को अंजाम देने वाली, दुर्गति का नाश करने वाली, दुर्गुणों से हमें बचाने वाली। तो उस दुर्गा की मां का नाम बताओ, बाप का नाम बताओ, भाई बहनों का नाम बताओ, कितनी बहनें थी वो, उनके कितने भाई थे, भाई बहन थे या नहीं थे, इकलौती थी क्या, कौन से शहर में जन्मी, कितनी पढ़ाई पढ़ी, क्या क्या डिग्री थी, और अगर उसने युद्ध किया तो युद्ध सिखाने वाला गुरु कौन था, कोई द्रोणाचार्य, कोई रामकृष्ण परमहंस, कोई कई गुरु होते हैं, उसका गुरु कौन था, कौन से शहर में जन्मी, किस जाति की थी, कुछ नहीं पता, बस इतना पता है एक दुर्गा नाम की देवी थी। श्री राम के मां बाप, भाई बहन, मित्र संबंधी सबका पता है, श्री कृष्ण के मां बाप, गांव, शहर, आयु, बचपन सबका पता है, हनुमान जी की, गणेश जी का सबका पता है, दुर्गा का, सरस्वती का, काली का बचपन नहीं पता, माँ बाप नहीं पता, जाति कुल धर्म नहीं पता, पढ़ाई डिग्री मित्र दोस्त संबंधी कुछ नहीं पता। वास्तव में दुर्गा हमारे संगम युग की संपूर्ण स्थिति का यादगार है, जब हम सब लौकिक बातें भूल जाते हैं। वो रूप है दुर्गा का, हमको याद नहीं हमारी माँ कौन थी, हमको याद नहीं हमारा बाप कौन था, हमको याद नहीं हम कितने भाई बहन थे, हमको याद नहीं हमारी डिग्री क्या थी, हमको बस इतना याद है कि हम आत्मा शिव बाबा की संतान हैं और अब हमको वापस घर जाना है। रंगमंच से हमारा लंगर उठ चुका है। इस एक स्मृति में जो अडिग हो जाता है वही दुर्गा बनता है और उसी पर लोग बलि चढ़ते हैं। जिसको लौकिक स्मृतियां हैं उस पे बलि नहीं चढ़ा जा सकता। बलि या तो शिव पे चढ़ती हैं या फिर देवियों पे चढ़ती हैं। किसी भी देवी का लौकिक नाम उस ढंग से नहीं पता। सीता के लौकिक जीवन का पता है लेकिन सीता को इन देवियों में गिनती नहीं करते। राधा के लौकिक जीवन का थोड़ा बहुत पता, राधा को इन देवियों में गिनती नहीं करती। वो जो नव दुर्गा हैं वो अलग ही हैं और वो हैं जिनके लौकिक जीवन की कोई पहचान नहीं। तो जब तक लौकिक का अंश मात्र भी है हम शक्ति रूप नहीं बन सकते। वो जब पूरी तरह से विस्मृत हो जाता है तब हमारा शक्ति रूप दुनिया में प्रकट होता है। तो निराकार रूप में बीज रूप और साकार रूप में फिर दुर्गा रूप, जिसमें हम पूरी तरह से संसार से परे हैं। अब हम कुछ और आत्म अभिमानी स्थिति की रोज के जीवन की चर्चा करेंगे। जैसे कोई शरीर छोड़ता है तो हम कहते हैं भाई इसकी आत्मा को शांति मिले। अब शरीर तो शांत पड़ा हुआ है, किसी ने नहीं कहा भाई इसकी शरीर की शांति के लिए प्रार्थना करो, जरूरत ही नहीं, अपने आप ही शांत हो गया। आत्मा निकली, वो था ही अशांत आत्मा बैठी थी तब, वो निकल गई अपने आप ही। अब शांति किसको चाहिए? आत्मा को चाहिए, क्योंकि आत्मा ने इस शरीर में रह करके इतनी हलचल जो की उसके कारण उसकी शांति का लेवल डाउन आया और अब हम उसको शांति का दान देंगे तो उसकी शांति का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, शांति बढ़ जाएगी। इसलिए हम आत्मा की शांति के लिए प्रेर करते हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश। इसमें से जल है 67% और पृथ्वी है 33%, बाकी जो वायु है हीट है और वैक्यूम है आकाश है। इसकी कोई परसेंटेज नहीं निकल सकती, ये बहुत सूक्ष्म है। वैसे शरीर में इनकी भी मात्रा है, जैसे गर्मी बहुत बढ़ जाए तो हम कहते हैं बुखार हो गया और हीट कम हो जाए तो हम कहते हैं निमोनिया हो गया। लेकिन भार नहीं है, अपन तोल सके 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम, ऐसे तोलने वाला चीज पानी और मिट्टी है। अब मान लीजिए हमने कहीं बहुत गर्मी में काम किया और पसीने में पानी गया और पानी का लेवल 67 के बजाय 65 पे आ गया तो प्यास लगती है और फिर हमें पानी दिया जाता है और हम उतना ही पानी पीते हैं जिससे लेवल 67 पे आ जाए, उसके बाद गिलास हटा देते हैं। हमने बहुत हार्ड वर्क किया और मिट्टी तत्व कम हो गया तो भूख लगती है, हम कहते भी कुछ खाने को दो और फिर हमें भोजन मिला और हमने उतना ही खाया जिससे हमारा बैलेंस मेंटेन हो जाए, 33 तक पहुंच जाए और फिर हम थाली हटा देते हैं। मतलब एक स्वस्थ शरीर में 5 तत्वों का बैलेंस अनिवार्य है। बीमारी किसका नाम है? किसी ना किसी तत्व का बैलेंस कम हुआ है, उसका नाम बीमारी है। तो जैसे शरीर को रोग लगती है ऐसे आत्मा भी बीमार होती है और आत्मा की बीमारी का कारण है आत्मा के जो सातों गुण हैं उनमें से किसी का बैलेंस बिगड़ गया। अब जैसे हम शांति ले लेते हैं, शांति का बैलेंस कब बिगड़ता है? मान लीजिए मैं एक ऐसे ऑफिस में काम करती हूं जहां बहुत हल्ला गुल्ला शोर शराबा है, लोग बड़े नेगेटिव हैं और लोग टांग खींचते हैं, बिना बात कोई ब्लेम लगा देता है, बिना बात कोई डांट मार देता है, न्याय नहीं है, भाई भतीजावाद चलता है, कोई तो टेबल पे आके बैठता ही नहीं है, उसके घर तनख्वाह पहुंच जाती है और कोई सारा दिन हार्डवर्क करता है उसको भी डांट पड़ती है, किसी की प्रमोशन बिना ही बात हो गई और कोई बहुत मेहनती और लायक उसकी प्रमोशन ही नहीं, तो ऐसे माहौल में रहने वाले व्यक्ति के विचार कैसे चलेंगे? कैसा ऑफिस है, कैसे लोग हैं, कितना हल्ला मचाते हैं, शोर मचाते हैं, कैसे एक दो का प्रचिंतन करते, शांति नहीं। तो जैसे पसीना निकलने से पानी का शरीर में लेवल डाउन गया था ना, ऐसे नेगेटिव सोचने से और ऐसे माहौल में रहने से शांति का लेवल डाउन गया, आत्मा की शांति कम हो गई। अब शांति कम हो गई, अंदर में शांति की प्यास है। अब वहां तो पानी की बोतल लेके आपने पानी का लेवल बराबर फट कर लिया, शांति का लेवल बराबर कैसे करोगे? कोई बोतल तो मिलती नहीं है शांति की। और इस इम्बैलेंस को लिए लिए अगर हम चलते रहे तो 6 महीने में कोई ना कोई क्रोनिक बीमारी शरीर में पैदा हो जाएगी, कैंसर, अल्सर, परमानेंट माइग्रेन या बीपी हाई रहने लगा, क्योंकि जो रेशो कम हुआ था उसको भरने का तरीका ही नहीं पता। कई योगी बाबा के बच्चे जिन्हें मालूम है कि योग लगा के मैं शांति का बैलेंस मेंटेन कर सकता हूं, पर योग लगता नहीं है या मेहनत नहीं करते हैं, लगाते नहीं, तो उसी अशांति को लिए लिए घूमते रहते। बहन जी कई दिनों से मन बड़ा अशांत है। बहन जी अरे बस क्यों अशांत, वह पता ही नहीं अशांत, अरे योग लगा के अशांति को दूर करो ना, लिए लिए घूम पूछते रहेंगे, मन बड़ा अशांत है कई दिनों से ना, सपने भी ऐसे ही आते हैं, रात को नींद भी नहीं आती है, मन भी नहीं लगता है। अब कारण तो पता है, या तो घर में ऐसा माहौल बना है अशांति का जिसके कारण नेगेटिव सोच सोच के। तो चंडीगढ़ पीजीआई की एक डॉक्टर है, डॉक्टर वीग, उन्होंने इसको एक बहुत सुंदर नाम दिया है, स्पिरिचुअल वैक्यूम, स्पिरिचुअल वैक्यूम, आध्यात्मिक खालीपन। वो था फिजिकल वैक्यूम, मतलब कोई न कोई तत्व की कमी थी, और ये है स्पिरिचुअल वैक्यूम, यानी कि शांति की कमी है, और उसके कारण रोग लग गया। कमी केवल शांति की नहीं, कमी प्रेम की भी हो जाती है। आप ऐसे घर में लोग नफरत से ही बोलते हैं, छिड़के ही बोलते हैं, बात सुनते ही नहीं, सीधी बात को तो भी वो उन्हें उल्टी लगती है, तो आपको लगता है क्या है? लोग मिठाई नहीं बोलते, प्यार से नहीं बोलते, घर में प्यार ही नहीं, तो प्यार की कमी के कारण वो स्पिरिचुअल वैक्यूम हो गया, प्योरिटी की कमी है, बोल चाल इम्प्योर, व्यवहार इम्प्योर, खान पान इम्प्योर, तो प्योरिटी का बैलेंस बिगड़ गया, ऐसे लगता है कहीं भाग जाऊं, या तो प्योरिटी नहीं है, तो वो उसके कारण वो स्पिरिचुअल वैक्यूम, प्योरिटी नहीं। इसलिए किसी भी भाई बहन के जीवन में अगर जरा सी भी ऐसी कमी उसको लगती है तो उसको झट गहन योग करना चाहिए, सारे काम छोड़ करके स्पिरिचुअल वैक्यूम को भरने की कोशिश करनी चाहिए। हम क्या करते हैं, रोज के कामों को महत्व देते हैं, क्या करें, फुर्सत ही नहीं है, ये भी करना पड़ता है, वो भी करना पड़ता है, लेकिन अगर ये वैक्यूम बढ़ता गया तो फिर एक दिन ये परमानेंट सुला देगा महीना भर, फिर सारे काम छोड़ने पड़ेंगे। इसलिए हमारी आत्म अभिमानी स्थिति की नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए, अगर वो नींव मजबूत होगी तो देखो सबसे पहले क्या होगा, एक नेगेटिव माहौल में मैं रहती हूं लेकिन मेरी शांति का जो रेशियो है वो इतना अधिक है कि उसका असर मेरे पे पड़ता नहीं है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये है कि उनका असर मेरे पे नहीं पड़ता लेकिन मेरी शांति का असर उन पे पड़ता है, इसलिए उन्होंने वो नेगेटिव बोल चाल माहौल कम कर दिया है। और तीसरे स्टेप में मेरा उन पे इतना प्रभाव पड़ा कि वो पूरी तरह खत्म हो गया और वो मेरे रंग में रंग गए, चाहे घर हो चाहे ऑफिस हो। मुझे अपने लेवल को इतना बढ़ाना है, इसलिए एक बहुत सुंदर कहावत है, मैन इज नॉट मियरली क्रिएचर बट क्रिएटर ऑफ हिज एनवायरमेंट। मनुष्य अपने वातावरण का गुलाम नहीं है, उसका रचयिता है। तो रचयिता तो हम तब बनेंगे ना जब हमारे अंदर स्पिरिचुअल पावर होगी, और ये स्पिरिचुअल पावर तब आएगी जब एक मुरली में बाबा ने कहा था आत्मिक जीवन और शारीरिक जीवन दोनों का बैलेंस होगा, उसमें भी आत्मिक जीवन का पलड़ा भारी होगा। इसको बाबा कई शब्दों में कहता है, धर्म और कर्म का संतुलन, कर्म और योग का संतुलन, परमार्थ और व्यवहार का संतुलन, इहलोक और परलोक का संतुलन, शरीर और आत्मा का संतुलन, दोनों का महत्व बराबर बराबर। अगर आपने शरीर को ज्यादा महत्व दिया, लौकिक व्यवहार को ज्यादा महत्व दिया, आत्मिक व्यवहार को कम महत्व दिया, आत्मा को कम महत्व दिया, तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसलिए घड़ी घड़ी आत्मचिंतन, आत्म चिंतन करना ही आत्मा को बल देना है, आत्मा को विस्मृत कर देना ही आत्मा को कमजोर करना है। आप और देखिए रोज के जीवन में, जैसे गीता में लिखा है, सूर्य एक स्थान पे रह करके सारे जगत को रोशन करता है, ऐसे आत्मा भ्रकुटी। तो केंद्र ये है, चेतना का केंद्र ये है, और इस चेतना की रेजिज पूरे शरीर में। दर्द किसको होता है, शरीर को या आत्मा को? आत्मा को, क्योंकि चेतना आत्मा है, चेतन शरीर तो जड़ है। आत्मा के निकलने के बाद इसको चाकू से काटो मारो दर्द नहीं होता है। अब जब हम किसी का ऑपरेशन करते हैं, मान लो मेरी उंगली का ऑपरेशन करना है, तो डॉक्टर क्या करता है, चेतना की जो चेतनता यहां तक आई हुई है उसको यहीं स्टॉप कर देता है, इसको कहते हैं लोकल एनेस्थीसिया। चेतना यहां तक है, यहां सुई चुभोगे दर्द होगा, इसको सुन्न कर दिया, यहां चाकू से काट रहा है डॉक्टर मुझे दर्द नहीं हो रहा है। जब हमारे घरों में हम बिजली के तार सब जगह प्रवाहित करते हैं दीवारों में से, तो एक पावर हाउस होता है और ये बिजली के तार, पंखे का तार, लाइट का, एसी का, कूलर का, सब तार गए। अब मान लीजिए पंखा खराब हो गया, तो जो मैकेनिक है वो क्या करेगा, पंखे के आसपास के तार का कनेक्शन पावर हाउस से कट करेगा और तब पंखे की ट्रीटमेंट करेगा, पंखे को ठीक करेगा, नहीं तो करंट लग जाए, और ठीक होते ही फिर तार को जोड़ देगा और फिर पंखा चलने लगेगा। तो हमको हमारी चेतना यहां से कट हो गई, इसको ठीक कर दिया उसने काट कूट के, और फिर चेतना को चालू कर दिया तो उंगली में फिर चेतना आ गई। तो पावर हाउस से पूरे का कनेक्शन है, जितनी जहां तक कनेक्शन है वहां तक दर्द है, और जहां से कनेक्शन नहीं है वहां दर्द होना बंद हो जाता है, फिर तो वो शरीर का अंग रहता ही नहीं, सुन्न हो गया। थोड़े दिन पहले बाबा ने मुरली में बोला था, जब तुम योग में बैठते हो तो सुन्न हो जाते हो। दो अर्थों में बाबा ने यूज किया था सुन्न नहीं होना है, एक ये भी बोला था। उसका अर्थ ये था कि भाई एकदम जैसे चेतना का पता ही नहीं कहाँ है, नींद आ गई, वो नहीं होना चाहिए। और दूसरा सुन्न बोला था जिसका अर्थ ये था कि बिल्कुल देह से अलग, चेतना जैसे देह में रही ही नहीं, देह सुन्न हो गया, हमारा ध्यान शरीर से हट गया, वो सुन्न अवस्था। पूरी की पूरी चेतना जैसे ऊपर गई बाबा के पास, नीचे से खत्म हो गई, चेतना को डिस्कनेक्ट कर दिया हमने बॉडी से, सुन्न हो गया। एक अर्थ वो था। दो अर्थों में बाबा ने सुन्न शब्द का प्रयोग किया था। तो ये जो शरीर है ये भी एक प्रकार का मकान है जिसमें चेतना की तारें फैली हुई, चेतना एक स्थान पे है। एक बार किसी ने पूछा था कि आत्मा हृदय में रहती है, बहुत लोग पूछते हैं ये बात, लेकिन नहीं, जो राजा होता है वो हमेशा सबसे ऊंचे सिंहासन पे बैठता है। अगर आत्मा हृदय में बैठे तो कितने सारे नौकर चाकर इससे ऊंचे हो जाएंगे, आंख इसके ऊपर हो गई, कान ऊपर, नाक ऊपर, मुंह ऊपर, उसके बाद मालिक बीच में थोड़े बैठेगा, मालिक तो सबसे ऊपर बैठेगा। इसलिए आत्मा यहां बैठती है। और कई लोग ये भी कहते हैं कि आज तो विज्ञान ने कई चीजें बना दी, जैसे कृत्रिम हृदय बना दिया, खून का संचरण कर ले, और श्वसन तंत्र बना दिया जिससे आर्टिफिशियल श्वसन दे देते हैं रोगी को, महीना भर भी उसको रख लेते हैं ऐसे, तो फिर आत्मा का अस्तित्व कैसे सिद्ध हुआ, सब कुछ आर्टिफिशियल हो गया। लेकिन इन चीजों से तो आत्मा का अस्तित्व और ज्यादा सिद्ध होता है। कैसे? क्योंकि हार्ट शरीर का एक हिस्सा है, फेफड़े शरीर का एक हिस्सा है, फिजिकल बॉडी का पार्ट है, और फिजिकल की नकल करना तो विज्ञान जानता ही है। आंख के नकल पे उसने कैमरा बना दिया, कान की नकल करके उसने फोन बना दिया, ये जो हमारा ग्राइंडर है अंदर, इसकी नकल करके उसने मिक्सी बना दी, हृदय की नकल करके हृदय बना दिया, फेफड़े की नकल करके फेफड़ा बना दिया। लेकिन आत्मा का जो मूल कर्म है वो सोचना, क्या उसने कोई सोचने वाला यंत्र बनाया कि भाई इसे महीना भर सोचने वाले यंत्र पे रख दो, आत्मा निकल गई और अब ये सोचता रहेगा? कोई आर्टिफिशियल तरीके से किसी से सुचवा सकता है? तो आत्मा की सुपीरियोरिटी तो सिद्ध हो ही गई, अरे भाई आत्मा निकल गई, अब यंत्र पे दादाजी को रख दो और पूछो दादाजी मकान बनाए कि नहीं बनाए। सोचने की शक्ति आत्मा के बिना आ नहीं सकती। इसलिए एक शब्द में आत्मा का परिचय है, आई थिंक देयर फोर आई एम, मैं हूं। इस बात का प्रमाण यह है कि मैं सोचता हूं। आई सी देयर फोर आई एम, नहीं, मैं ना देखूं तो भी मैं हूं। आई हियर देयर फोर आई एम, नहीं, मैं ना सुनूं तो भी मैं हूं। I walk, therefore I am, मैं ना चलूं तो भी मैं हूं। लेकिन एक शब्द में परिभाषा, I think, therefore I am, मैं जब तक सोच रहा हूं तब तक ही मैं इसमें हूं। जिस दिन सोचना बंद हो जाए आप समझ लेना मैं इसमें से चला गया हूं। तो मेरी मुख्य विशेषता है मेरी सोच, और बाबा ने हमारी सोच को बदला। अब तक हमने क्या सोचा, मैं सीता हूं, मैं गीता हूं, मैं ललिता हूं, अब हमको समझ में आया मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। किसी ने कहा मैं व्यापार में झूठ बोलता हूं, बहन जी पाप लगेगा, व्यापार की झूठ तो बहुत छोटी झूठ है, लेकिन सारी झूठों में जगदीश भाई ने एक आर्टिकल लिखा है, सारी झूठों का माई बाप जहाँ से सारी झूठे पैदा होती हैं, वो ये है कि मैं शरीर हूं। आप केवल व्यापार में झूठ थोड़ी बोलते हैं, आप तो घर में आके भी झूठ बोलते हैं। आप कहते हैं मैं फलाने का बाप हूँ, फलाने का दादा हूँ, फलाने का चाचा हूँ, ये भी तो झूठ है। आप तो एक आत्मा है, चाचे का रोल प्ले कर रही है, आप चाचा नहीं है। मामा का रोल प्ले कर रही है, आप मामा नहीं है। पिता का रोल प्ले कर रही हैं, आप पिता नहीं। आपके पास कौन सा गारंटी कार्ड है कि मैं जब तक बच्चा, झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार, बच्चा छोटा है, माँ चली गई, बच्चा छोटा है, बाप चला गया, नकली चीजें, क्या पता कब टूट जाए। गारंटी कार्ड जो असली चीजें होती हैं उनका गारंटी और वारंटी कार्ड होता है, कंपनी की जो चीजें होती हैं, होता है ना। बताओ माँ के नाम का कोई गारंटी वारंटी कार्ड, बाप के नाम का कोई गारंटी वारंटी कार्ड? इतने साल तो मेरी माँ रहेगी ही रहेगी, मेरा बाप रहेगा ही रहेगा, नकली है ये सब। रात को सोए सुबह मिले कि ना मिले, नकली चीजें, झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब सुन। हाँ शिव बाबा असली है, कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, गारंटी है। केवल वारंटी नहीं है, गारंटी भी है, था है और रहेगा। इसलिए है भी सच, होसी भी सच, आद सच जुगाद सच, नानक है भी सच होसी भी सच। ये बात किसी रिश्ते के लिए नहीं कही गई, केवल बाबा के लिए कही गई। और अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जिस पे हम योग भी करेंगे बाद में, क्योंकि अभी अगली क्लास तो है नहीं, इसलिए मैं थोड़ा टाइम और भी ले लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आत्मा है ये एक यात्री है, सतयुग त्रेता द्वापर चलता आया, हम सब चलते आ रहे हैं, किसी युग में इसका ठहराव नहीं है। और जैसे एक नदी पहाड़ से जब चलती है तो कितनी स्वच्छ होती है, एकदम क्रिस्टल उसका जल होता है। फिर पहाड़ से उतर के जब वो मैदान में आती है तो मैदान में आते उसमें गंदगी शुरू हो जाती है, और फिर वो मैदान से आगे एक शहर, दूसरा शहर, तीसरा शहर, गंदगी बढ़ती जाती है और फिर एकदम गंदे नाले में परिवर्तित तो हो जाती है। हम सब भी नदियां हैं, तो उतरे तो पहाड़ से थे, परम धाम से थे, और पहाड़ से उतर के जैसे ही मैदान में आए थोड़ा थोड़ा मैल मिलना चालू हुआ। सतयुग त्रेता में तो कम, लेकिन द्वापर आते ही मिलते मिलते अब तो आत्मा गंदे नाले में बदल गई है। अब इस गंदे नाले में बदली हुई आत्मा का शुद्धिकरण कैसे हो, तो इसके लिए जो पानी की बूंद है उसकी और हमारी कहानी मिलती जुलती है। बिंदु बनाम आत्मा, आत्मा बिंदु बनाम पानी की बूंद, एक बूंद बादल में है, अपने पिता की गोद में है, एकदम स्वच्छ है, एकदम सुरक्षित है। और फिर बादल ने उसको कहा, जा बेटा अब तू नीचे जा, और पिता ने उसको अपने से अलग कर दिया। तो वो बूंद ऊपर से नीचे आई, एटमॉस्फेयर में भी आजकल बहुत गंदगी है, थोड़ी बहुत तो तभी उसमें मिक्स हो गई, और फिर वो किसी आंगन में आके गिरी तो वहां का बाल, तिनका, कंकर उसमें मिक्स हुआ। फिर आंगन में तो नहीं रहेगी, बाहर निकलेगी नाले में से, बाहर कई घरों के नाले थे, उसमें गई, थोड़ा और कीटाणु ये सब मिक्स हुआ, फिर गंदे नाले में गई, काली हो गई एकदम। ऐसे ही हम भी परम धाम में थे, अपने पिता की गोद में थे, तो हमारे पिता ने कहा जाओ बेटा नीचे जाओ, खेलो खेल खेलो, क्योंकि आत्मा का महत्व खेल खेलने में ही है। अगर पानी की बूंद ना बरसे तो पानी का चक्र रुक जाए, और आत्मा अगर परम धाम छोड़ के नीचे ना आए तो कल्प का पूरा चक्र रुक जाए। तो हम नीचे आए, सतयुग में त्रेता में चलते आए, और चलते चलते कलाएं कम होती गई होती गई, और फिर कलयुग का अंत आ गया। कभी एक घर में जन्मे वहां की कुछ मिट्टी कंकर, अगले जन्म में दूसरे घर में जन्मे वहां के कुछ संस्कार, तीसरे घर में जन्मे वहां के संस्कार, ऐसे होते होते 84 जन्मों के संस्कार। अब आत्मा भी काली हो गई, बूंद भी गंदे नाले में काली हो गई, आत्मा भी काली हो गई, और दोनों का शुद्धिकरण जरूरी नहीं, तो अगला कल्प कैसे चलेगा और पानी का अगला साइकिल कैसे चलेगा? श्रावण मास आएगा तो बरसेगा क्या बादल, अगर ये बूंद शुद्ध होके ऊपर ही नहीं जाएगी तो उसके लिए प्रकृति ने एक बहुत सुंदर सिस्टम बनाया है कि उस गंदी काली बूंद के ऊपर सूर्य की किरण पड़ती है, और जैसे सूर्य की किरण पड़ती है वो बूंद अपनी स्थूल काया को छोड़ करके सूक्ष्म काया धारण कर लेती है। सूक्ष्म काया माना वाष्प रूप, और वाष्प रूप में गंदगी हो ही नहीं सकती। वाष्प का जो जल है उसमें गंदगी का कोई अंश भी नहीं हो सकता, और कितनी भी गंदगी थी सारी नीचे रह गई, और वाष्प रूप धारण करके वो उड़ गई और फिर अपने पिता की गोद में जाके बैठ गई। एकदम जैसी थी वैसी ही बन गई, पूरा चक्र लगा करके। प्रकृति ने कितना सुंदर सिस्टम बनाया है, गंदी होना भी जरूरी और शुद्ध होना भी जरूरी। और जैसे इस बूंद को इस सूर्य ने शुद्धिकरण किया, हमारे लिए फिर ज्ञान सूर्य है, उस ज्ञान सूर्य की किरण इस मैली आत्मा पे पड़ी, और इस मैली आत्मा ने भी अपना ग्रोस रूप छोड़ दिया और सूक्ष्म रूप धारण किया। कौन सा है? फरिश्ता। फरिश्ते रूप में कोई अशुद्धि हो ही नहीं सकती। मैं फरिश्ता हूं, नीचे भी आसमान ऊपर भी आसमान, और मैं बीच में फरिश्ता हूं। न नीचे की खींच है और ऊपर अभी मुझे जाना नहीं है, क्योंकि अभी मुझे काम करनी है, फिर तो मैं परमधाम परमानेंट पहुंच जाऊं, पर मैं बीच में हूं। नीचे की मुझे कोई आकर्षण नहीं है, ऊपर भी मुझे जाना नहीं है, लेकिन मैं एकदम प्योर हूं, फरिश्ता हूं। इस ग्रोस बॉडी में अशुद्धि है, यह बना ही अशुद्धि से, इसका अन्न अशुद्ध, इसको जन्म देने वाले अशुद्ध, इसकी पालना करने वाले अशुद्ध, इसके खून के कतरे कतरे में अशुद्धि है, लेकिन मैं फरिश्ता इससे ऊपर उठ गया। तो जब मैं ऊपर उठ गया सारी अशुद्धि नीचे रह गई। अब मुझ फरिश्ते को ना माँ की याद है, ना बाप की याद है, ना गांव की याद है। हैं देखो फरिश्ते कितने बेहद के हैं। फरिश्तों में कोई जवान बूढ़ा नहीं होता, बूढ़ा फरिश्ता जवान फरिश्ता, कभी सुना? फरिश्तों में कोई मेल फीमेल नहीं होता, फरिश्ती है कि फरिश्ता है। फरिश्तों में कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता, हिंदू फरिश्ता के मुस्लिम फरिश्ता। फरिश्तों में कोई देश का भेद नहीं होता, जैपनीज फरिश्ता के चाइनीज फरिश्ता। फरिश्तों में कोई पढ़ा और अनपढ़ नहीं होता, पढ़ा लिखा फरिश्ता के अनपढ़ फरिश्ता। कोई पद नहीं होता, बड़ा फरिश्ता के छोटा फरिश्ता। तो फरिश्ता माना सर्व हदों से पार, बेहद, जिसमें फरिश्तों का बादशाह ब्रह्मा बाबा बैठा है। ब्रह्मा बाबा कितनी सेवा कर रही हैं? आज देखो ये इतनी सेवाएं हो रही हैं, ये बाबा की वहां से जो काश आती है ना उसका फल है। तो अगर हम भी बाबा जैसे बन जाएं, बाबा इंतजार कर रहा है, आओ बच्ची, आज भी कहा तुम सतो प्रधान बनोगे नंबर वार तो विनाश होगा और तो नेचुरल कैलमिटीज होंगी। अगर उससे पहले हो जाए तो हम भी चपेट में आ जाएं, बाबा वो चाहता नहीं। और बच्चे सुरक्षित तब बने जब वो बिल्कुल स्तो प्रधान स्टेज में, क्योंकि स्तो प्रधान आत्मा को प्रकृति या दुनिया की कोई भी चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ये नियम है। तो उस बूंद की तरह से इस बूंद को भी अभी वाष्पीकरण के जरिए शुद्ध बनना है। तो रेडी हो वाष्पीकरण के लिए? रेडी हो तो बिल्कुल बहुत प्यार से, बहुत आनंदमय स्थिति में, बहुत उमंग उल्लास से वाष्पीकरण का तो बड़ा आनंद है। कैसे हम उड़ेंगे, सब कुछ नीचे रह जाएगा, इतने जन्मों का इकट्ठा किया हुआ सब कुछ नीचे रह जाएगा। तो सबसे पहले एकदम रिलैक्स हो जाइए, महसूस कीजिए कि मैं एकदम लाइट हूं, शरीर का अंग अंग एकदम लाइट है। सब बोझों से फ्री, स्मृतियों से फ्री, भाव स्वभाव से फ्री, बंधनों से फ्री। न मैंने किसी को पकड़ा, न किसी ने मुझे पकड़ा। निर्बंधन, निर्विकार, निर्मल। और अपनी ऐसे निर्मल रूप को प्रकृति के मध्य निहारिए, बेदाग, स्वच्छ, पारदर्शी, एकदम चमकदार। जिसमें से प्रकाश की किरणें निकल निकल के चेहरे के चारों ओर छा गई हैं। धीरे धीरे चेहरे का ओरा बढ़ते बढ़ते शरीर के भी चारों ओर छा गया है। मैं प्रकाशमान आत्मा प्रकाश के घेरे में हूं। लाइट हूं, माइट हूं, और अब चंद्रयान से भी तेज गति से उड़ रही हूं ऊपर की ओर, प्रकाशमय ओरा लिए हुए। मैं ऊपर जा रही हूं और सब पुरानी बातें पीछे छूट रही हैं। पुरानी दुनिया, पुराने रिश्ते, पुराने लोग, सबको बाय बाय टाटा। और मैं उड़ गई ऊपर बादलों के बीच, नीचे भी आसमान, ऊपर भी आसमान। और फ्लोट कर रही हूं एक बादल की तरह, मुझसे दिव्य रश्मियां चारों ओर फैल रही हैं। ये रश्मियां नक्षत्रों और ग्रहों तक जा रही हैं। मेरी ये दिव्य रश्मियां सूर्य, चंद्र, तारे और ग्रहों को भी सतो प्रधानता का बल दे रही हैं। मेरी ये दिव्य रश्मियां आसमान के कण कण में फैल रही हैं। अगले 5000 वर्ष के लिए ग्रहों और नक्षत्रों का भी शुद्धिकरण कर रही हैं। मैं निर्बंधन फरिश्ता हूं, बेहद का फरिश्ता हूं, बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, बेहद की स्मृति, बेहद का लक्ष्य। मैं बेहद बाप की छत्र छाया में बेहद का फरिश्ता हूं। सारा विश्व मेरा है, सारे विश्व का मैं सेवक हूं। मैं विश्व कल्याणकारी, मेरी दिव्य रश्मियां तेजोमय रश्मियां धरती तक पहुंच रही हैं। मैं देख रहा हूं धरती के गोले को, उस गोले पर मेरी किरणें आच्छादित हो गई हैं। धरती के कण कण को पवित्रता का बल मिल रहा है। पांचों तत्वों को पवित्रता का बल मिल रहा है। मैं दयालु फरिश्ता हूं, मेरे रोम रोम में दया का, करुणा का झरना बह रहा है। दयालु पिता से मुझे दया का वरदान मिला है। मेरे माध्यम से मेरे दयालु पिता की दया दीन दुखियों तक पहुंच रही है। विश्व की त्राही त्राही करती आत्माओं को मुझ फरिश्ते के वाइब्रेशन सुकून दे रही है। मेरे दया के वाइब्रेशन, प्रेम के वाइब्रेशन शांति शांति के वाइब्रेशन इत्र की तरह सृष्टि में फैल रहे हैं। मैं लाइट और माइट हाउस हूं, मेरी माइट आत्माओं तक पहुंच रही है, करुणा और दया के वाइब्रेशन पाकर आत्माएं धन्य धन्य हो रही हैं। मैं बाप समान विश्व सेवाधारी हूं, बाप समान खुदाई खिदमतकार हूं, बाप समान सबका सहारे दाता हूं, बाप समान कष्ट निवारक, बादलों की सतह से ऊपर और ऊपर, पांच तत्वों की सतह से पार उड़ चला हूं अपने वतन की ओर। मेरा अपना वतन, मुझ फरिश्ते का वतन, लाल सुनहरी प्रकाश का वतन, धवल धवल उजला उजला वतन, जहां खड़े हैं फरिश्तों के बादशाह, बाप दादा जिनकी फैली उजली प्रकाशमय बाहें मेरा आह्वान कर रही है, आओ मेरे फरिश्ते बच्चे, आओ मेरी बाहों में समा जाओ, वतन में आओ विश्राम पाओ। बाप दादा के प्यार दुलार में खो जाओ, अपनी जन्म जन्म की थकान मिटाओ, आओ मेरे राज दुलारी आओ। कितने मिश्री जैसे मीठे शब्द भीतर के कानों में रस खोल रहे हैं, और मैं प्रकाशमान दिव्य रश्मियां बिखेरता हुआ लाइट माइट रूप पहुंच गया हूं फरिश्तों के बादशाह के सम्मुख, जिसकी प्रकृति
मिट्टी में दो बल्ब जगमगा रहे हैं। बाप और दादा, जगत पिता और परम पिता, अनादि पिता और आदि पिता, वरदाता और विधाता, और मैं पद्मा पदम भाग्यवान फरिश्ता समा गया हूं उन थवल थवल प्रकाशमान बाहों में। और अब मेरे मस्तक पर उनके मस्तक से निकलती हुई शक्तिशाली किरणें शक्तियां बनकर समा रही मुझ पर। लाइट का प्रवाह आ रहा है उनके नेत्रों से, पवित्रता की शक्तिशाली किरणें मुझ में समा रही है। मेरा पवित्रता का ग्राफ बढ़ रहा है, मेरी उज्ज्वलता निखर रही है, मुझे संपूर्ण पवित्रता का वरदान मिल रहा है। मैं बाप और दादा के संपूर्ण प्यार का उत्तराधिकारी फरिश्ता हूं जो उनका है। मेरा भी है, मैं बाप और दादा का राइट हैंड हूं। ये वतन मानो शक्ति पुंज है जहां से शक्तियों का प्रवाह सारे विश्व में हो रहा है। यही विश्व परिवर्तन का केंद्र है। लाइट और माइट का केंद्र है। मेरे मीठे बाबा, आपके सानिध्य में असीम सुख, असीम आनंद, असीम बल, सब कुछ असीम है।
मैं भगवान के सम्मुख हूं, उनकी डायरेक्ट शक्तियां मुझ में